मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज वर्ष 2018 के नवंबर का पहला दिन है और आज इस 1 नवंबर 2018 के afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं कम्युनिकेशन स्किल पर कुछ बातें करने के बारे में मैंने निर्णय लिया है और खासकर इसके पीछे कोई कारण भी रहा है। कारण ये रहा है कि मैंने अक्सर महसूस किया है कि जब आप किसी की आलोचना करने पर उतारू होते हैं तब आपकी भाषा भी बदल जाती है। मुझे कभी कभी लगता है कि यदि आपको किसी की आलोचना करनी है या किसी की समीक्षा करनी है, तर्कपूर्ण ही वो क्यों न हो, किसी को गलत ठहराना है, तो क्या ऐसी स्थिति में दो चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहना चाहिए? दो चीजें, पहली भाषा कि हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा टोन, यानी कि हमारी जो बोलने की जो अंदाज है, जो बोलने की शैली है वो कैसी है। देखिए, आप सीधी सी बात भी कह सकते हैं और उस सीधी सी बात को बड़े टेढ़े अंदाज में कह सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं ये अंदाज है, तो अंदाज करने से अर्थ बदल जाता है। मित्रों, इस पर मैंने बहुत विचार किया और विचार करने के बाद, और विचार ही नहीं किया है बल्कि सच पूछे तो मैंने बहुत ही इस पर प्रैक्टिकल भी किए, इन सबको मैंने करके देखा और करके देखने के बाद अब मेरी बिल्कुल यह धारणा मजबूत हो गई है कि जब भी इस तरह के वाद विवाद की स्थिति हो, मैं केवल वाद विवाद की स्थिति की बात कर रहा हूं, संवाद की बात नहीं। संवाद का मतलब है कि जब आप किसी के साथ बड़े इत्मीनान के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ठीक है, वहां सब चलेगा, लेकिन जब वाद विवाद की स्थिति आती है, आरोप प्रत्यारोप की बात आती है, जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो होता क्या है कि दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो जीतना चाहते हैं और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जीतने के लिए बहुत जरूरी है कि चीख कर बोला जाए, चिल्ला कर बोला जाए, ऊंचे आवाज में व्यंगात्मक शैली अपनाई जाए और साथ ही साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो बिल्कुल तीखे हों और सामने वाले के सिर और माथे में पड़ करके उसे फोड़ दें, बिल्कुल जैसे कि सामने वाला सुनकर तिल मिला जाए। हम अक्सर यही करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके कहीं ना कहीं हम अपने हारने के रास्ते बना रहे हैं, हम ये बात भूल जाते हैं। दोस्तों, आज इसी बात को लेकर के मैं थोड़ा एक अलग ही संदर्भ ले रहा हूं और संदर्भ ले रहा हूं मैं हनुमान का। हनुमान मुझे बहुत ही अद्भुत चरित्र लगते हैं, बहुत ही अद्भुत चरित्र है मित्रों, और आप लोगों को शायद मालूम होगा, मैंने एक आध बार इससे पहले भी चर्चा की है कि हनुमान जी के चरित्र को लेकर के मैंने सदा सफल हनुमान किताब भी लिखी है, तो मुझे अक्सर बीच बीच में हनुमान जी याद आ जाया करते हैं, याद ही रहते हैं, ज्यादा याद आ जाया करते हैं। तो एक उसमें छोटा सा प्रसंग है, आप चाहें तो बकायदे सुंदरकांड उठाकर देखें। सुंदरकांड में होता क्या है, आपको मालूम है कि हनुमान पहुंच गए हैं लंका में सीता जी का पता लगाने के लिए, सीता को उन्होंने देख भी लिया है, इसके बाद वो अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, रावण की अच्छी खासी वाटिका को उजाड़ देते हैं, यहां तक कि वो रावण के बड़े बेटे अक्षय कुमार को मार भी देते हैं और इसके बाद फिर उन्हें बंदी बना करके, हनुमान जी को बंदी बना करके मेघनाथ और रावण के दरबार में ले जाते हैं। अब रावण का दरबार है और हनुमान जी वहां बंदी बनकर खड़े हैं, बंदी बनकर के खड़े हैं, उनको बकायदे पाश में, नागपाश में बांधा गया है और खड़े हैं। वहां के संवाद को आप देखिए, वहां दो लोगों के बीच में संवाद हो रहा है और यह संवाद रावण और हनुमान के बीच में है। आप रावण की भाषा देखिए और मैं चाहूंगा कि आप सब सुंदरकांड के इस अंश को जरूर पढ़ें, और वैसे सुंदरकांड आपने पढ़ा भी होगा, सुंदरकांड का पाठ भी किया होगा, सुंदरकांड का पाठ सुना होगा, लेकिन सच पूछिए तो सुंदरकांड पर विचार नहीं किया होगा। उस पर विचार कीजिए, उसका नाम ही है सुंदरकांड। सुंदरकांड का मतलब है सुंदर घटना, जहां सुंदर सुंदर घटना होला कि वहां सुंदर सुंदर घटना नहीं होती, बाग उजाड़ा जाता है, जो लंका है पूरी की पूरी जला दी जाती है, उसमें सुंदर है क्या, लेकिन बहुत विचित्र सा है। जब आप इन सब चीजों पर विचार करेंगे ना तो आपको खूब मजा आएगा। सुंदरकांड, वहां भाषा देखिए तो रावण जो है चूंकि गुस्से में है, राजा है, अभिमानी है ही, उनका बेटा मारा गया है और फिर इतने प्रतापी राजा की वाटिका को एक बंदर आकर के उजाड़ दे, इससे अधिक अपमान की बात क्या हो सकती है। तो रावण तो बिल्कुल तिलमिलाया हुआ है, भयानक रूप से तिलमिलाया हुआ है। तो मित्रों वो हनुमान को उल्टी सीधी बात कहता है, केवल हनुमान को ही नहीं कहता है, उनके स्वामी राम को भी वो पता नहीं क्या क्या कहता है कि अरे जाओ तुम बात करना और ये है और मैं देख लूंगा। जिस तरह से हम आम तौर पर कहते हैं उसको आप पढ़िएगा, मैं जानबूझ करके उसके दोहे आपको नहीं सुना रहा हूं क्योंकि नहीं तो फिर सारा समय जो है ना उसी में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दुर्वचन कहेगा, उपहास उड़ाता है वो हनुमान का, अधम कहता है हनुमान को, तुम अधमी हो, तुम शठ हो, मूर्ख हो। और जब संबोधन करता है तो तेरा, तोरा, तो ही, तुम, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करता है। कहीं भी वो सम्मानजनक शब्द नहीं बोलता हनुमान के लिए, राइट। चलिए रावण का तो समझ में आता है कि वो बोल रहा है, लेकिन हनुमान यहां इंपॉर्टेंट है कि हनुमान जवाब में क्या कह रहे हैं। मित्रों उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, वहां आपको संवाद कौशल का एक बहुत बड़ा मंत्र दिखाई देगा, मंत्र मिलेगा। उन सब अपमानजनक शब्दों को सुनने के बावजूद हनुमान कहीं भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं, अपना संतुलन बाकायदे बनाए रखते हैं, बाकायदा बनाए रखते हैं। और जो रावण को का संबोधन देते हैं वो तो बाकायदे बहुत ही सम्मानजनक संबोधन देते हैं, बाकायदे वो रावण की शक्ति का बखान करते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। वो नहीं कहते हनुमान की तरह जैसे रावण हनुमान के लिए कह रहा है, उस तरीके से हनुमान रावण के लिए नहीं कह रहे हैं, हनुमान हनुमान की तरह कह रहे हैं जैसा उन्हें कहना चाहिए। रावण की बकायदे वो शक्ति का बखान करते हैं, इसके बाद रावण को बकायदे उसकी वंश परंपरा की याद दिलाते हैं कि तुम कितने महान वंश के व्यक्ति हो, इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सीता को छोड़ दो। और यहां तक कि ऐसी स्थिति में भी वो रावण को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भैया तुम सीता को छोड़ दो, बेकार लड़ाई झगड़ा मत करो, और राम को तुम्हारे राज्य से कुछ लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे राज्य को तुम्हारे ही हाथों सौंप देंगे, तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन रावण कहां मानने वाला था, रावण मानने वाला नहीं था। तो यहां आप देखेंगे कि जो वाद विवाद हो रहा है, एक दूसरे को जो पराजित करने की बात है, एक दूसरे को समझाने की जो स्थिति है, वो मित्रों अद्भुत है। और यहां हनुमान ने जो बाकायदे यूं कह लीजिए कि जिस टेक्निक को, कम्युनिकेशन की टेक्निक को अपनाया है, वो ये है कि उन्हें अपनी भाषा में तासीर पैदा करनी है। तासीर पैदा करने का मतलब है कि उन्हें अपनी भाषा की शक्ति का इस्तेमाल करना है। और याद रखिए कि भाषा में जो शक्ति आती है वो चिल्लाने से नहीं आती है, जोर जोर से बोलने से नहीं आती है, अपमानजनक चुन चुनकर शब्दों का प्रयोग करने से नहीं आती है। भाषा में शक्ति आती है जब आप शब्दों को शक्ति देते हैं। और शब्दों को शक्ति देने के लिए आप करेंगे क्या, आप देखिए। मैं आपके बहुत ही छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं कि जब हनुमान सीता के पास पहुंचे हैं तो सीता भी बड़ी नाराज सी हो रही है, राम से बड़ी दुखी भी हैं। तो देखिए कि हनुमान क्या स्थिति में आते हैं। मन संतोष सुनत कपि बाणी, कि कपि की बाणी सुनते ही मन में संतोष पैदा हो गया। किसके संतोष पैदा हो गया, सीता के। आप देख रहे हैं तो आप कैसी बाणी बोल रहे हैं कि सामने वाले को भरोसा हो रहा है। यहां संतोष का मतलब भरोसा से है। तो ये वाणी कैसी थी, ये वाणी देखिए कि भगति प्रताप तेज बल सानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, उनकी जो आवाज है उस आवाज में क्या क्या मिली हुई थी, भक्ति। भक्ति यानी कि समर्पण, जो जिस काम के लिए मैं आया हूं उस काम के प्रति समर्पण का भाव, प्रताप शक्ति, मेरे अंदर की शक्ति उसमें शामिल है, मेरे अंदर का प्रताप और बल उसमें शामिल है। देखिए तेज प्रताप बल ये तीनों थोड़े से अलग अलग सी चीजें हैं, उनको डिटेल में बताने का अभी वक्त नहीं है, क्योंकि जब हम तेज की बात करते हैं तो उसमें चेतना की शक्ति आ जाती है, जब हम बल की बात करते हैं तो उसमें शरीर की शक्ति आ जाती है, और जब हम प्रताप की बात करते हैं तो उसमें आत्मा की शक्ति आ जाती है। तो ये तीनों शक्ति, इन तीनों शक्तियों के को मिलाया और उसमें भक्ति भी मिलाई, और इस तरीके से जो उनकी वाणी बनी वो इतनी प्रभावशाली बन गई कि निराश, हताश और एक ऐसी सीता जो कहती है कि हे आसमान, तुम अंगार गिरा दो, मैं उसमें जलकर नष्ट हो जाऊं, उनके भी मन को ये संतोष मिल गया, ये भरोसा मिल गया कि नहीं, राम आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। इसका मतलब है मित्रों, संतुलन, संतुलन। अगर आपकी वाणी में संतुलन है, आपके विचारों में संतुलन है, तो जब भी संवाद की स्थिति आएगी, मान करके चलिए कि आप उसमें हमेशा विजयी होकर ही निकलेंगे। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, कल फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।